एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं, पश्चिमी दर्शन की बिल्कुल शुरुआती जड़ों तक। प्री सोक्रेटिक विचारक,
हाँ ये नाम सुने तो हैं, थेल्स, हेराक्लिटस, पार्मेनाइडीज, स्कूल में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो। अक्सर लगता है कि ये बस कुछ पुरानी अजीब सी बातें करने वाले लोग थे,
जैसे किसी ने कह दिया सब कुछ पानी है।
हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम कैथरीन ओसबोर्न के काम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन शुरुआती यूनानी विचारकों का असली महत्व क्या था, मतलब क्यों आज भी हम इनकी बात कर रहे हैं।
सही कहा, क्योंकि ओसबोर्न का जो तर्क है ना, वो बड़ा मजेदार है। वो कहती हैं कि उनकी असली देन उनके जवाब नहीं थे, बल्कि सवाल पूछने का, सोचने का एक नया तरीका था।
अच्छा तरीका, हाँ, उन्होंने दुनिया को समझने के लिए मिथकों और देवताओं की कहानियों से हटकर तर्क और बहस का रास्ता अपनाया। ये वेस्टर्न थॉट के लिए एक बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी मोड़ था और इसकी गूंज आज तक है।
तो आज का मिशन यही है कि इस बदलाव को, इस नए तरीके को समझा जाए।
बिल्कुल।
तो पहले ये बताइए, ये कैथरीन ओसबोर्न है कौन, मतलब इस विषय पर उनका क्या खास नजरिया है?
देखिए, कैथरीन ओसबोर्न ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर हैं और उनका स्पेशलाइजेशन है प्राचीन यूनानी दर्शन, खासकर ये प्री सोक्रेटिक विचारक। कैम्ब्रिज से पीएचडी हैं और मतलब दशकों का अनुभव है इस फील्ड में।
ठीक है, पर प्री सोक्रेटिक्स पर तो बहुत लिखा गया है, ओसबोर्न की अप्रोच में क्या अलग है, क्या नया बता रही हैं वो?
उनकी खास बात यह है, और ये बहुत जरूरी है, कि वो बाद के लेखकों जैसे प्लेटो या अरस्तु ने जो इनके बारे में लिखा उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि उन बाद वाले लेखकों के अपने एजेंडा थे। ओसबोर्न कोशिश करती हैं कि वो सीधे उन ओरिजिनल टुकड़ों, जिन्हें फ्रैगमेंट्स कहते हैं, पर वापस जाएं, जो बहुत कम बचे हैं।
हाँ सुना है, बहुत कम लिखा हुआ मिला है इनका।
बिल्कुल, तो उन टुकड़ों को उनके अपने समय, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करती हैं। वो एक तरह से क्या कहते हैं, पुरातात्विक खुदाई कर रही हैं विचारों की।
अरे वाह, डिटेक्टिव की तरह।
कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और उनका जोर इस बात पर है कि इनका महत्व इनके निष्कर्षों में उतना नहीं है जैसे सब पानी है, बल्कि उनके तर्क करने के तरीकों में है। उन्होंने सवाल कैसे पूछे, बहस कैसे की, ये हिम्मत वाली बात थी।
तो वो इन्हें सिर्फ पुराने वैज्ञानिक नहीं मानती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं गंभीर दार्शनिक थे जो तर्क की, लॉजिक की नींव रख रहे थे। ये उनका नजरिया है।
दिलचस्प है। तो फिर ओसबोर्न की किताबों का निचोड़ क्या है, क्या कहानी है इन प्री सोक्रेटिक्स की?
संक्षेप में कहें तो ओसबोर्न बताती हैं कि कैसे छठी और पांचवीं सदी ईसा पूर्व में, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले, इन यूनानी विचारकों ने पश्चिमी दर्शन और विज्ञान दोनों की नींव रखी।
और उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
केंद्रीय तर्क यही है कि इन्होंने दुनिया को समझने के लिए मिथोस यानी पौराणिक कथाओं, देवताओं की कहानियों से हटकर लोगोस यानी तर्कसंगत जांच, रीजनिंग का रास्ता अपनाया।
तो ये सिर्फ लिस्ट नहीं है कि भाई थेल्स ने ये कहा, एनैक्सिमेंडर ने वो कहा?
नहीं नहीं ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बौद्धिक क्रांति की कहानी है, एक सफर की कहानी।
और ये सफर अकेले तय नहीं हुआ?
बिल्कुल नहीं। ओसबोर्न यही दिखाती हैं कि ये दार्शनिक थेल्स, एनैक्सिमेंडर, हेराक्लिटस, पार्मेनाइडीज और भी कई, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के विचारों को सुन रहे थे, उन पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें चैलेंज कर रहे थे, सुधार रहे थे।
मतलब एक तरह की डिबेट चल रही थी।
हाँ, एक जबरदस्त लाइव डिबेट जो सदियों तक चली। सोचिए 2500 साल पहले।
कमाल है। और इस डिबेट का मुद्दा क्या था? सिर्फ ये कि दुनिया कैसे बनी?
वो तो था ही, लेकिन सिर्फ उतना नहीं। इस बहस के जरिए उन्होंने सोचने के नए औजार घड़े। तर्क देना, सबूत मांगना, आलोचना करना, एक्सप्लेन करने वाले सिद्धांत बनाना।
अच्छा,
वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि दुनिया किस चीज से बनी है, वो ये भी पूछ रहे थे कि हम जानते कैसे हैं, ज्ञान क्या है, असलियत क्या है, एक सही जिंदगी कैसे जिए। मतलब सोचने का पूरा फ्रेमवर्क बदल रहे थे वो लोग।
ठीक है, तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। लेकिन एक दिक्कत तो शुरू में ही है। आपने कहा कि इनके लिखे हुए पूरे टेक्स्ट तो है नहीं हमारे पास, सब टूटे फूटे टुकड़े हैं।
हाँ, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो भी हमें पता है वो बाद के लेखकों जैसे प्लेटो, अरस्तु या उनसे भी बाद के लोगों ने जो कोट किया या समराइज किया उसी से पता है।
और उनके अपने मोटिवेशन थे लिखने के?
बिल्कुल, उनके अपने पूर्वाग्रह थे, अपने तर्क थे जिन्हें वो साबित करना चाहते थे, तो वो अक्सर इन प्री सोक्रेटिक्स को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे।
तो ऑसबॉर्न कहती हैं कि हमें इन बाद वाले सोर्सेस को भी क्रिटिकली देखना होगा, सिर्फ ये नहीं कि थेल्स ने क्या कहा, बल्कि ये भी कि अरस्तु ने थेल्स के बारे में क्यों ऐसा कहा।
एग्जैक्टली, ऑसबॉर्न का जोर इसी बात पर है, सिर्फ निष्कर्षों पर मत अटको कि सब कुछ पानी है, ये देखो कि वो उस नतीजे पर कैसे पहुंचे, उनका तर्क क्या था, उसकी बनावट क्या थी।
अच्छा, यहीं से असली कहानी शुरू होती है।
हाँ, और शुरुआत होती है माइलेशियन स्कूल से, मिलेटस शहर के विचारक। इसमें सबसे पहले आते हैं थेल्स, जिन्हें अक्सर पहला फिलोसोफर कहा जाता है।
हाँ, वही सब कुछ पानी है वाले, आज तो ये बात थोड़ी मतलब बचकानी सी लगती है ना।
हाँ, सतह पर तो लगती है, लेकिन ऑसबॉर्न कहती है कि पानी शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसके पीछे का आइडिया है।
क्या आइडिया?
आइडिया ये कि पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को किसी एक सिंगल नेचुरल चीज से समझाया जा सकता है, बिना किसी देवता या सुपरनेचुरल ताकत का जिक्र किए।
ये बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से।
बहुत बड़ी। ये मिथक से तर्क की ओर पहला बड़ा कदम था, और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसा दावा था जिस पर बहस हो सकती थी, जिसे गलत साबित किया जा सकता था। ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस जैसा था।
अच्छा, तो ये शुरुआत थी। फिर उनके स्टूडेंट आए, एनैक्सिमेंडर। उन्होंने क्या अलग सोचा?
एनैक्सिमेंडर ने सोचा, भाई अगर सब कुछ पानी ही होता तो आग कैसे होती? पानी तो आपको बुझा देता है, मतलब एक बेसिक चीज बाकी सबको कैसे बनने देगी?
लॉजिकल सवाल है।
हाँ, तो उन्होंने एक ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा अमूर्त आइडिया दिया, एपिरॉन या एपिरॉन। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है इस पर बहस है, लेकिन मोटा मोटा अर्थ है असीम, अनिश्चित, जिसकी कोई सीमा ना हो।
पानी जैसी कोई जानी पहचानी चीज नहीं।
नहीं, ये एक तरह की मूल अवस्था है, जिसमें से विपरीत गुण जैसे गर्म ठंडा, गीला सूखा निकलते हैं और फिर आपस में टकराकर दुनिया बनाते हैं। ये अपने टीचर की आइडिया की एक लॉजिकल आलोचना थी और एक बेहतर विकल्प पेश करने की कोशिश।
और फिर एनैक्सिमेनीज, उन्होंने तो हवा कहा, ये तो फिर से एक जानी पहचानी चीज हो गई।
हाँ, वो वापस एक जानी पहचानी चीज पर आए, लेकिन उनका असली कॉन्ट्रीब्यूशन था बदलाव का एक मैकेनिज्म बताना, एक प्रक्रिया।
प्रक्रिया कैसे?
उन्होंने कहा कि सब कुछ हवा से बनता है, लेकिन हवा के गाढ़े, कंडेंसेशन या पतले, रेरिफैक्शन होने से। हवा जब फैलती है, पतली होती है, तो आग बन जाती है। जब सिकुड़ती है, गाढ़ी होती है, तो पहले बादल, फिर पानी, फिर मिट्टी, फिर पत्थर बन जाती है।
अरे वाह,
ये पहली बार किसी ने बताया कि कैसे एक चीज दूसरी में बदलती है, एक नेचुरल प्रोसेस से। ये डाइवर्सिटी को समझाने की पहली सिस्टमैटिक कोशिश थी।
कमाल है, इसके बाद तो सोच और भी फैली होगी। ज़ेनोफेनीज जैसे लोग आए जिन्होंने आलोचना की।
बिल्कुल, ज़ेनोफेनीज बड़े मजेदार थे। उन्होंने देवताओं के इंसानी रूप की खिल्ली उड़ाई। उनका वो मशहूर कोट है ना कि अगर बैल, घोड़े या शेर भगवान बना सकते तो उनके भगवान भी बैल, घोड़े या शेर जैसे ही दिखते।
हाँ, सही है।
ये बेसिकली परंपरा पर, सुनी सुनाई बातों पर सवाल उठाना था। उन्होंने ये भी कहा कि शायद हम इंसान कभी एब्सोल्यूट ट्रुथ, अंतिम सत्य जान ही ना पाए। एक तरह की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, बौद्धिक विनम्रता की बात की उन्होंने।
फिर पाइथागोरस आए, मैथ्स वाले, और हेराक्लिटस, जिनकी वो नदी वाली बात बहुत फेमस है।
हाँ, हेराक्लिटस, जिन्हें समझना थोड़ा टेढ़ा काम है। आप एक ही नदी में दो बार पैर नहीं रख सकते। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल रहा है।
तो फिर क्या कहता है?
ऑसबॉर्न बताती हैं कि उनका मेन आइडिया है लोगोस, लोगोस, एक छुपा हुआ अंदरूनी तर्क या सिद्धांत जो सारे बदलाव को कंट्रोल करता है। बदलाव ऐसे ही रैंडम नहीं हो रहा। ये बदलाव विपरीतों के तनाव से पैदा होता है। जीवन और मृत्यु, दिन और रात, युद्ध और शांति, इनके बीच एक टेंशन है, एक बैलेंस है, और स्थिरता इसी बदलाव के पैटर्न में छुपी है, किसी स्थिर चीज में नहीं।
ये तो काफी गहरा है, लेकिन इसके बाद जो आया वो तो शायद सबसे बड़ा झटका था, पार्मेनाइडीज।
हाँ, ये फिलॉसफी में एक टर्निंग पॉइंट था। पार्मेनाइडीज ने कहा, भूल जाओ इंद्रियों को, आंख, कान, नाक पर भरोसा मत करो, सिर्फ शुद्ध तर्क, प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करो।
और उनका लॉजिक क्या था?
उनका बेसिक तर्क था, जो है वो है, और वो नहीं हो सकता कि ना हो। जो नहीं है वो नहीं है, और उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना?
हाँ, लगता तो है, पर इसके नतीजे क्या निकले?
नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा, इस लॉजिक से ये साबित होता है कि असलियत यानी बीइंग सिर्फ एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, कोई खाली जगह नहीं हो सकती।
क्या मतलब? बदलाव हो ही नहीं सकता, दुनिया एक ही है। तो ये जो हम अपने आसपास इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, हिलती डुलती बदलती हुई, ये सब क्या है फिर?
उनके हिसाब से ये सब एक भ्रम है, धोखा है, हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं।
अरे बाप रे।
उनका तर्क था कि बदलाव का मतलब होगा कि जो नहीं है, नथिंगनेस, उससे कुछ बने, या जो है वो नहीं में बदल जाए, और जो नहीं है तो हो ही नहीं सकता, ना उसके बारे में सोचा जा सकता है, तो बदलाव लॉजिकली इम्पॉसिबल है।
ये तो दिमाग घुमा लेने वाली बात है।
बिल्कुल, असलियत सिर्फ तर्क से जानी जा सकती है, इंद्रियों से नहीं। उनके शिष्य ज़ेनो ने तो अपने पैराडॉक्स, जैसे वो अकेलीज और कछुए वाली रेस, इसी बात को सपोर्ट करने के लिए बनाए थे।
तो ये तो फिलॉसफी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर हमारी सेंस ऑर्गन्स भरोसे के लायक नहीं है तो हम दुनिया को जानेंगे कैसे? फिर बाकी फिलोसफर्स ने इसका जवाब कैसे दिया?
यहीं पर एंट्री होती है प्लूरलिस्ट्स, यानी बहुलतावादियों की। उन्होंने पार्मेनाइडिस के तर्क की ताकत को समझा कि कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता, ये बात मान ली,
लेकिन दुनिया को भी बचाना था।
हाँ, तो उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई चीज बनती या मिटती नहीं है, लेकिन दुनिया एक अकेली चीज से नहीं बनी है, ये कई तरह के बेसिक, फंडामेंटल, शाश्वत, ना बदलने वाले तत्वों से बनी है।
अच्छा।
और जो बदलाव हमें दिखता है वो इन मूल तत्वों के मिलने और बिछुड़ने से होता है, मिक्सिंग और सेपरेशन से। ये तत्व खुद नहीं बदलते।
जैसे एम्पीडोक्लीज ने कहा था, चार तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, और दो ताकतें हैं, प्रेम और संघर्ष, जो इन्हें मिलाती और अलग करती हैं।
बिल्कुल, ये कोशिश थी पार्मेनाइटिस को जवाब देने की। फिर एनाक्सागोरस आए, उन्होंने कहा कि सिर्फ चार नहीं, अनंत किस्म के बीज हैं, स्पर्माटा, हर चीज में हर दूसरी चीज का अंश मौजूद है।
और इनको कौन चलाता है?
उनको नूस नाम की एक बाहरी शक्ति, एक तरह का कॉस्मिक माइंड या इंटेलिजेंस, व्यवस्थित करता है।
लेकिन शायद सबसे पावरफुल जवाब एटमिस्ट्स, यानी परमाणुवादियों का था, लुसिपस और डेमोक्रेटस।
हाँ, ओस्बोर्न के अनुसार ये एक तरह से इस पूरी बहस की परिणति एक क्लाइमैक्स था। उन्होंने पार्मेनाइडिस की बात मान ली कि जो है वो शाश्वत और अनचेंजिंग है,
लेकिन
उन्होंने कहा कि जो है वो एक नहीं बल्कि अनगिनत हैं। ये हैं बेहद छोटे, इतने छोटे कि और तोड़े नहीं जा सकते, अविभाज्य कण, जिन्हें उन्होंने कहा एटमॉस, जिसका मतलब है जिसे काटा न जा सके, यानी एटम,
परमाणु।
हाँ, परमाणु। ये परमाणु हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, बदलेंगे नहीं।
और इनके हिलने डुलने, मिलने बिछुड़ने के लिए उन्होंने जो नहीं है, यानी खाली जगह, वॉइड, को भी मान लिया।
बिल्कुल, ये उनका जीनियस स्ट्रोक था। उन्होंने कहा कि जो है यानी परमाणु, और जो नहीं है यानी खाली जगह, दोनों असलियत में मौजूद है। परमाणु इस खाली जगह में लगातार घूमते रहते हैं, टकलाते हैं, हुक जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं और अलग होते हैं। इसी से सारी दुनिया, सारी चीजें बनती हैं।
ये तो पूरी तरह से एक मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी नजरिया था।
हाँ, इसमें किसी देवता, किसी उद्देश्य, किसी बाहरी मन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ परमाणु और खाली जगह और उनके मोशन के नियम। इसने दुनिया की हर घटना को, हर चीज को समझाने का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क दे दिया।
वाह। और फिर इसके बाद सोफिस्ट आए, जिन्होंने फिलॉसफी का फोकस ब्रह्मांड से हटाकर इंसानों, समाज, नैतिकता, भाषा पर कर दिया, और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के लिए स्टेज तैयार किया। क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल जर्नी है ये।
बिल्कुल।
तो चलिए, ओस्बोर्न जो मुख्य बातें या थीम्स निकालती हैं इस पूरी कहानी से, उनको एक बार समराइज करते हैं। पहली तो वही सबसे बड़ी बात, मिथोस से लोगोस की क्रांति।
हाँ, ये सबसे फंडामेंटल शिफ्ट है। देवताओं की मनमर्जी वाली कहानियों को छोड़कर दुनिया की एक प्राकृतिक, तर्कसंगत, सबके लिए एक जैसी व्याख्या खोजने की कोशिश। थेल्स का पानी वाला सिद्धांत सिंबॉलिक है, क्योंकि वो बहस के लिए खुला था।
दूसरा, दर्शन का मतलब ही है तर्क और बहस। ये कोई आइसोलेशन में सोचने का काम नहीं था, ये एक डायलॉग था, एक संवाद। एनैक्सिमेंडर ने थेल्स को सुधारा, प्लूरलिस्ट्स ने पार्मेनाइडिस को जवाब दिया। असली कॉन्ट्रीब्यूशन था अपने आइडिया के लिए कारण देना, तर्क देना।
तीसरा, आर्के की खोज, यानी इस बदलती हुई, इतनी विविध दुनिया के पीछे कोई एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोई मूल सिद्धांत या पदार्थ क्या है। ये खोज माइलेशन से लेकर एटमिस तक चलती रही।
चौथा, बदलाव बनाम स्थिरता की टेंशन। हेराक्लिटस का बहता हुआ दरिया और पार्मेनाइडिस का जमा हुआ न बदलने वाला सत्य, ये फिलॉसफी का एक परमानेंट सवाल बन गया।
पांचवां, आभास और वास्तविकता का भेद, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। पार्मेनाइडिस ने सबसे तीखे तरीके से यह सवाल उठाया कि क्या हमारी इंद्रियां भरोसे के लायक हैं? अगर नहीं तो फिर सच्चा ज्ञान मिलेगा कैसे?
ये एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का कोर इशू है।
और छठा, तर्क और एब्स्ट्रैक्ट सोच की ताकत, कैसे विचार ठोस पानी से हटकर अमूर्त एपेरॉन तक गए, और फिर पार्मेनाइडिस ने तो सिर्फ प्योर लॉजिक से ही पूरी दुनिया को समझने की कोशिश की। यह दिखाता है कि इंसान सिर्फ देखकर नहीं, सोचकर, अमूर्त तरीके से सोचकर भी सच्चाई तक पहुंच सकता है।
बिल्कुल।
और कुछ यादगार कथन भी हैं, है ना, जो इन विचारों का सार पकड़ते हैं। ज़िनोफिनीज का वो देवताओं वाला कटाक्ष,
हाँ, अगर बैल भगवान बनाते, ये याद दिलाता है कि हमारी सोच कितनी इंसानी या कह लें कि हमारे अपने नजरिए से बंधी होती है।
या हेराक्लिटस की नदी वाली बात, ये सिर्फ ये नहीं कि सब बदल रहा है, ये बदलाव के पीछे के नियम, लोगोस और पहचान, आइडेंटिटी के बारे में भी है। शायद पहचान किसी स्थिर चीज में नहीं बल्कि बदलाव के पैटर्न में ही होती है।
और पार्मेनाइडिस का वो कथन, सोचना और होना एक ही बात है।
हाँ, ये बहुत गहरा है। ये तर्क भाषा और वास्तविकता के बीच के कनेक्शन की तरफ इशारा करता है कि शायद हम वही सोच सकते हैं जो वास्तव में हो सकता है, या जो सोचा जा सकता है वही वास्तविकता है। इसने मेटाफिजिक्स की नींव रखी।
और फिर सोफिस्ट प्रोटागोरस का वो मशहूर वाक्य, मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है।
हाँ, इसने तो पूरी डिबेट को ही घुमा दिया। फोकस ब्रह्मांड से हटकर इंसान पर आ गया। क्या सच सबके लिए एक जैसा है, ऑब्जेक्टिव, या हर इंसान का अपना सच होता है, सब्जेक्टिव? ये बहस तो आज तक चल रही है।
ये सब सुनने में बहुत दिलचस्प है, नो डाउट, लेकिन आज की हमारी जो लाइफ है, इतनी फास्ट, इतनी कॉम्प्लेक्स, क्या उसमें इन 2500 साल पुराने विचारों की कोई जगह है, कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस है?
मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग। थेल्स ने जैसे सवाल पूछा था, हमें भी पूछना चाहिए। हमारे आसपास जो मान्यताएं हैं, जो मिथक हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, समाज में हो, या हमारी अपनी सोच में, क्या वो वाकई तर्क पर आधारित हैं, या हम बस उन्हें मान रहे हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है?
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, सवाल पूछना।
दूसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। जैसे मिलेशियन या एटमिस्ट ने दुनिया को उसके सबसे बुनियादी तत्वों तक तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही हम किसी प्रॉब्लम को उसकी जड़ तक जाकर समझ सकते हैं, मौजूदा धारणाओं से बाहर निकलकर नए सॉल्यूशन सोच सकते हैं।
अच्छा,
और हेराक्लिटस से क्या सीख सकते हैं?
बदलाव को स्वीकारना और समझना। दुनिया बदलती है, लाइफ बदलती है, ये फैक्ट है। हेराक्लिटस के लोगोस की तरह हमें उस बदलाव के पीछे के पैटर्न को, उसकी लय को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
स्थिरता शायद बदलाव का विरोध करने में नहीं बल्कि उसे समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने में है।
और पार्मेनाइडिस से?
उनसे क्या लें? शोर में से संकेत निकालना। पार्मेनाइडिस ने आभास के मार्ग और सत्य के मार्ग में फर्क किया था। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, बहुत सारा शोर। हमें तर्क का इस्तेमाल करके, मतलब सत्य के मार्ग पर चलकर, इस शोर को फिल्टर करना सीखना होगा, असली मुद्दे को, काम की बात को पहचानना होगा।
और ज़िनोफेनीज?
उनसे बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ये समझना कि हमारा नजरिया, हमारा ज्ञान सीमित है, हम सब कुछ नहीं जानते। इससे हम दूसरों के विचारों को सुनने, उनसे सीखने और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार रहते हैं।
सही बात है।
तो अगर कैथरीन ऑसबोर्न के विश्लेषण से एक सबसे बड़ा सबक लेना हो तो वो क्या होगा?
मेरे लिए तो शायद यही है कि फिलॉसफी की शुरुआत सही जवाब खोजने के बारे में उतनी नहीं थी जितनी जवाब खोजने का एक क्रांतिकारी तरीका खोजने के बारे में थी। प्री सोक्रेटिक विचारकों की असली विरासत, उनकी असली देन, ये तर्कसंगत जांच की पूरी परंपरा शुरू करना है।
हाँ, ये आइडिया के ब्रह्मांड को समझा जा सकता है और उसे समझने का रास्ता तर्क, सबूत और खुली बहस से होकर जाता है।
बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात यही थी कि ये लोग सिर्फ अर्ली साइंटिस्ट नहीं थे, ये प्रॉपर फिलोसोफर्स थे। इनके सिद्धांत जैसे पानी, हवा, परमाणु, वो शायद आज हमें उतने सही ना लगें, लेकिन इनका इंटेलेक्चुअल करेज, सवाल पूछने की हिम्मत, लॉजिक लगाने की कोशिश और एक दूसरे की बात सुनने और काटने का जज्बा,
हाँ,
वही वेस्टर्न थॉट का, शायद मॉडर्न थॉट का ही डीएनए है।
तर्क की मांग, सबूत की तलाश, आभास और वास्तविकता के बीच फर्क करना, इंसानी तर्क में विश्वास और ये बहस का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला,
बिल्कुल
ये सब आज भी उतना ही रिलेवेंट है।
बिल्कुल सही कहा।
थोड़ा रुक कर एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, आज जब हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी निष्कर्ष पर, तो क्या हम उस नतीजे पर ज्यादा ध्यान देते हैं या उस पूरी प्रक्रिया पर, उस रास्ते पर जिससे हम मां तक पहुंचे?
प्री सोक्रेटिक शायद हमें उसी प्रक्रिया के महत्व की याद दिलाते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।